मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लेवे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सव्यसाहूनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्द्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जो हिंदी वाला मंगलाचरण है वो अपन सब यहां पर पाठ करते हैं। आत्मानुशासन ग्रंथ हिंदी वाला मंगलाचरण। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विद सुखकार, आत्म हित उपदेश ते करे मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आते मानु शासन श्रुत, जाकी दुख हरि सुख कारी साची शासना। साचो गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी, भद्र गुण धारी भव्य करते उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को, बने उपकार ना से मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो, जाते मंद बुद्धि हूं के होते अर्थ भाषना। हाँ जी, विगत दिनों से यहां पर आत्मानुशासन ग्रंथ को हम सब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक 37 गाथाएं अपनी हो चुकी है। अपन 37 गाथाओं का थोड़ा अर्थ समझकर और फिर आगे बढ़ते हैं। जी, 37 नंबर की गाथा में अपना यहां पे 38 नंबर की गाथा प्रारंभ हो रही है, तो उसको अपन पहले समझते हैं। 38 नंबर की गाथा निकालिए, उसका हिंदी पद्यानुवाद पाठ करते हैं और फिर उसे आगे समझते हैं। कटु विष सम विषयों में मिलता तुम्हें कौन सा स्वाद कहो, जिसे खोजने है तू निजामृत को करते अपवित्र अहो। कष्ट अहो विपरीत राग को मधुर मानते हो धीमान, इंद्रिय मन के दास हुए हो पित्त रोग युत मनुज समान। देखिए क्या कहते हैं यहां पर गुणभद्र आचार्य कि इस जीव ने अनादि काल से जो भ्रमण हो रहा है उसका कारण है अपनी मिथ्या मान्यता। किसी दूसरे ने हमें भ्रमण कराया ऐसा नहीं है। अनादि काल से जो हम भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण कर रहे हैं मतलब अनादि काल से जो दुख सहन कर रहे हैं उसका कारण अपनी ही गलती है, और जब तक हमें अपनी गलती भासित ना हो तब तक हम उसे ठीक करने का उपाय भी नहीं करते। लेकिन यहां पर हमें अपनी गलती भी बताई जा रही है और उसे ठीक करने का उपाय भी बताया जा रहा है, और ठीक होकर जो हम स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, उसका उपाय भी यहां पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि अपनी मिथ्या मान्यता के कारण कटु विषम विषयों में मिलता तुम्हें कौन सा स्वाद कहो, बराबर अपने स्वाध्याय मंदिर के जस्ट सामने में जो चित्र बना है, कौन सा? हाँ बोलिए, संसार, संसार दुख, कि संसार में कैसा कैसा दुख है, बराबर। और उसमें भी जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति मतलब वो कोई दूसरा है, ऐसा कोई दूसरा नहीं है, वो व्यक्ति हम ही है, कि जो एक इतना सा विषय भोग करने के लिए पांचों इंद्रिय के भोग करने के लिए अपने दुख को भी नहीं देखता, या पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि उससे मरण हो जाए तो भी वो विषय भोग करना चाहता है, बराबर। और वो जो संसार का संसार में जो दुख है, किस प्रकार से दुख है, उसका चित्र आप सबने, हम सबने देखे हैं कि कैसे एक व्यक्ति एक बूंद शहद पाने के लिए, विषय भोग करने के लिए अपनी मृत्यु तक हो जाए उसे तक नहीं गिनता है, लेकिन विषय भोग करना चाहता है। सब इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण सबसे पहले मैंने बताया ना, हाँ बोलिए, अपनी मिथ्या मान्यता। क्योंकि उसने क्या मान रखा है, आत्मा में सुख है ये तो उसने जाना ही नहीं, या मैं खुद सुख स्वभावी हूं ये तो उसने जाना ही नहीं। उसने क्या मान रखा है कि ये पर पदार्थ में, विषयों में ही सुख है, इसलिए वह विषयों के प्रति, पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं, झपट्टे मारता है। क्या? विषयों को पाने के लिए जैसे बने वैसे प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने सुख स्वभावी आत्मा को जाना नहीं, जाना नहीं तो श्रद्धा नहीं किया, श्रद्धा नहीं किया तो सम्यक ज्ञान नहीं है, और सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक आचरण भी नहीं है। तो यहां पर आचार्य देव कहते हैं कि कटु विषम विषयों में मिलता तुम्हें कौन सा स्वाद कहो, जिसे खोजने हेतु निजाम व्रत को करते अपवित्र अहो। क्या? निजामृत को अपवित्र कर दिया, अपवित्र कर दिया मतलब अपने में अपनापन करता तो क्या कर सकता था, क्या बन सकता था, स्वयं भगवान बन सकता था। क्योंकि आज तक जितने भी भगवान बने उनने क्या किए हैं, क्या किया, अपनी आत्मा में अपनापन किया, और जिनने अपने में अपनापन किया, अपनी आत्मा ने में अपनापन किया, तो वह सब भगवान बन गए। आप सब पंचकल्याणक में गए हो ना, इधर पंचकल्याणक में, कोई भी पंचकल्याणक में गए हो ना जी, पंचकल्याणक में क्या होता है, पंचकल्याणक आत्मा से परमात्मा बनने का मतलब की प्रक्रिया है, आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया। मतलब क्या कि जैसे हम आत्मा हैं वैसे ही जिनका पंच कल्याणक हुआ वो भी आत्मा थे। ठीक है, थोड़ा अंतर है, तीर्थंकर नाम कर्म का उनको उदय है, उनके अनुसार उनको वो सब सहयोग सामग्री इत्यादि वो है, लेकिन वास्तविक में देखें तो वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। जैसे उन्होंने आत्मा में अपनापन करके तप किया, तप मतलब क्या कि बाहर आत्मा का ध्यान करने के लिए बैठ गए उन और सब उपसर्ग होते रहे, ये होते रहे, इतना बस तप है। ये तो बाह्य तप है, बाह्य में दिखने वाला तप है। वास्तविक तप तो है स्वरूपे प्रतपनम तपः, अपने स्वरूप में ऐसे लीन हुए या अपने स्वरूप में प्रवर्तन करना, लीन होना, वह तप है। और वह तप तीर्थंकर के जीव या जो भी भगवान बने हैं उन सभी जीवों ने किया, मतलब अपने आत्मा में लीन हुए। और लीन होते 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 छठवा सातवा गुणिस्थान चलता रहता ना, छठवा सातवा गुणिस्थान चलते चलते एक समय ऐसे लीन हुए कि अब बाहर आ ही नहीं, और अपने आत्मा में लीन होकर वो परमात्मा बन गए। हमने क्या किया, हम विषयों में लीन हो गए, क्या संसार और मोक्ष जो भी है वो अपनी गलती के कारण संसार है, और यदि अपन अपनी गलती सुधार लें तो अपनी ही गलती सुधर जाने के कारण हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जीव मतलब छहों द्रव्य स्वतंत्र है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा सुख की बात यह है कि मैं स्वतंत्र हूं, मुझे अपना कार्य करने के लिए पर की, पर मतलब शरीर से लेकर सब, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्या बस एक बार अपने आत्मा में अपनापन करना है, और जो आत्मा में अपनापन करता है तो उसके विषय कसाय धीरे 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 छूटते जाते हैं। विषय कसाय छूटते जाते हैं मतलब पर पदार्थ तो ज्यों के त्यों रहते हैं, विषयों में अपनापन, विषयों में सुख बुद्धि छूटती जाती है। चार प्रकार की बुद्धि है ना, कौन कौन सी, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, एकत्व, ममत्व, बराबर। तो मैं उसका कर्ता, पर पदार्थ का कर्ता धर्ता नहीं हूं, क्योंकि यदि मैं पर पदार्थ का कर्ता धर्ता होता तो हमेशा पर पदार्थ मेरे अनुसार प्रवर्तन करना चाहिए था, बराबर। और ऐसा तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि हमारे अनुसार हमेशा नहीं करते, क्या कदाचित कभी कुछ पुण्य का संयोग हो तो भले ही अपने अनुसार प्रवर्तन कर जाएं, बराबर। स्त्री पुत्र कुटुंब इत्यादि अपना पुण्य का उदय हो तो अपने अनुसार प्रवर्तन कर जाएं, लेकिन वो हमेशा अपने अनुसार प्रवर्तन नहीं करते। उन्होंने जो प्रवर्तन किया वो तो अपने उनके ही अनुसार किया, हम मानते हैं कि इन्होंने हमारे अनुसार प्रवर्तन किया, बराबर। और जब वो अपने अनुसार प्रवर्तन नहीं करते, मैं उनका कुछ कर्ता धर्ता नहीं हूं, तो हमें उनमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं करनी चाहिए। भोक्तृत्व बुद्धि दूसरी क्या है, भोक्तृत्व बुद्धि कि मैं इन सब का भोग कर सकता। और गुरुदेव श्री क्या कहते थे कि आत्मा परद्रव्य ने अड़तुज नहीं, बराबर ने, क्या जब छूते ही नहीं तो फिर भोग कैसे करेगा। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण ये पांचों इंद्रियां हैं, या मन अनिंद्रिय है, उनसे भी भोग नहीं करता, बस क्या करता है, मानता है। और मानता क्यों है, सबसे पहले क्या बताया मैंने, मिथ्यात्व के कारण। उल्टी मान्यता के कारण मानता है, पर पदार्थ में अपनापन करता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि करता है, एकत्व बुद्धि करता है, हा? शरीर और मैं एक ही है, ममत्व बुद्धि करता है, ये सब पर पदार्थ मेरे हैं, और फिर इनके कारण जो विषय इत्यादि हैं उन्हें भोगना चाहता है। ये यहां पर 38 नंबर की गाथा पिछली क्लास में अपनी हो चुकी थी, मतलब सोमिल भाई ने 38 नंबर की गाथा तक लिए थे, अपन यहां पर लेंगे 39 नंबर की गाथा, लेकिन अभी अपन इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं। दो लाइन का अभी अर्थ हुआ, जिसे खोजने हेतु निजामृत को करते अपवित्र अहो, कष्ट अहो विपरीत राग को मधुर मानते हो धीमान, इंद्रिय मन के दास हुए हो पित्त रोग युत मनुज समान। क्या जैसे किसी को बुखार हो गया हो, पित्त रोग हो गया हो, पित्त ज्वर हो गया हो, तो अभी उसे अच्छे पदार्थ भी मधुर नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। अच्छे पदार्थ मतलब जो सामग्री है भोजन भोगने योग्य भोजन इत्यादि, तो वो भी उसे कड़वे लगते हैं। और किसके कारण? इसी प्रकार जो राग है, अपने आत्म स्वभाव को तो जाना नहीं और राग कैसा लगता है, राग करना, मधुर मानते हो धीमान, पर पदार्थ में राग करना धीमान, धीमान मतलब बुद्धिमान, ज्ञान वाले, ज्ञान वाला होकर जड़ को अपना मानता है। ज्ञान वाला है, स्वभाव कैसा है, ज्ञानमय है, लेकिन अपने आप को कैसा मान लिया है, जड़ वाला। क्या करता है कि जो शरीर आदि है उसमें अपनापन करता है, तो जब शरीर में अपनापन किया तो भाई आप ज्ञान स्वभाव वाले हो या जड़ स्वभाव वाले, क्योंकि शरीर का तो स्वभाव कैसा है भाई जी, जड़ स्वभाव है ना, अचेतन है, यहीं रह जाने वाला है, बराबर। तो इन सब पांच इंद्रिय इत्यादि मन के दास हुए, पांच इंद्रिय और मन के कारण इन पर पदार्थों में अपनापन करता है, ठीक है, पांच इंद्रिय और मन से इन पर पदार्थों के विषयों को भोगना चाहता है इत्यादि, ये चर्चा अपनी पहले हुई थी। अब अपन यहां पर तृष्णा की विकरालता, तृष्णा की जो विशालता है, विकरालता है, उस पर अपन यहां पर चर्चा करते हैं। उसका पहले जो मुख्य बिंदु है वो अपन पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, विषयाशक्ति के कारण तेरा चित्त किसी भी वस्तु से निवृत्त नहीं है, जो भी वस्तुएं बची हैं वे तेरी भक्षण करने की सामर्थ्य में कमी के कारण बची है, परंतु भावों से तो तू सर्वभक्षी ही हो गया। यह बात आगामी छंद में समझाते हैं, मतलब यह बात यहां पर समझाया जाएगा कि कैसे यह जीव सर्व वस्तुओं का तो भोग कर नहीं सकता, लेकिन मानता यही है कि मैं सबका भोग कर लूं। क्या स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामच्छ है और महामच्छ के कान के ऊपर कौन सा मच्छ है, तंदुल मच्छ, बराबर तंदुल मच्छ है, तो दोनों के भाव देखो आप, दोनों के परिणाम देखो, क्या करता है कि महामच्छ में के मुख में हजारों लाखों मछलियां आती जाती है, लेकिन वह एक का भी सेवन नहीं करता, और तंदुल मच्छ जो कि सेवन कर नहीं पाता, लेकिन परिणाम कैसे हैं कि यदि मैं इसकी जगह होता तो एक को भी नहीं छोड़ता, है ना। और हम लोग देखो, हम जो जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी पढ़ते हैं, हमें दूसरे को नहीं समझना है, हमें तो अपने परिणाम अपने भाव सुधारना है कि जैसे वो जीव इस प्रकार के विषयों को सेवन करने का परिणाम करता है तो मरकर नरक में जाता है, तो वो जीव तो जाता है, हमें विचार ये करना है कि कहीं हम भी तो उसी श्रेणी में नहीं है। जैसे बने वैसे बचने का प्रयास करना चाहिए, बराबर। देखो, अपन इसका हिंदी गाथा पाठ करते हैं। विषय प्रवृत तुम्हारे तृष्णा, सुख मुख से जो कुछ बचा जगत में, जैसे शक्तिहीनता से रवि शशि भकने में राहु असक्त। देखो, यहां पर एक उदाहरण भी दिया गया है और सिद्धांत भी बताया गया है कि कैसे हम परिणाम करते हैं, और कैसे परिणाम तो करते हैं लेकिन भोग नहीं पाते, उसका अलग दुख। परिणाम करते उससे जो कर्म इत्यादि का बंधन होना है, उससे जो दुख हो रहा है वो तो दुख है ही है, लेकिन भोग नहीं पाते उसका भी दुख है। और इन्हीं सब दुखों का नाम ही तो संसार है, बराबर। देखो, देखते निवृत्ति रहित होने से तू सर्व जगत की माया अंगीकार करने की अभिलाषा रखता है। क्या कहता है कि जो पांच इंद्रिय हैं और पांच इंद्रिय के जो विषय हैं उन सबको भोगना चाहता है। क्यों चाहता है? सभी क्यों का आंसर सबसे पहले ही है। क्यों चाहता है? क्योंकि इसकी मिथ्या मान्यता के कारण, पदार्थ के कारण नहीं भाई साहब, क्या पदार्थ के कारण ये सब परिणाम होते हैं? ऐसा नहीं, पदार्थ तो जगत में है लेकिन उन पदार्थों में हमने सुख बुद्धि की है, इसलिए हमारे विषय भोग इत्यादि रूप परिणाम होते हैं। नहीं तो भरत चक्रवर्ती के पास पदार्थों की कोई कमी है? बोलो, इतने सब कुछ पर मतलब पदार्थ इत्यादि हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या बोलते हैं अपन सब, भरत जी घर में ही बैरागी। अच्छा, इतना सब कुछ पदार्थ होने के बाद, संयोग होने के बाद वो बैरागी, और कोई गरीब हो और वो कहे कि उनके पास इतना सहयोग है और आप उनको बैरागी कहते हैं, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब थोड़ा बहुत है, और आप मुझे कहते हो कि बहुत विषय अभिलाषी है। हाँ, कारण क्या है? मिथ्यात् और सम्यक्त, मिथ्या मान्यता और सच्चा श्रद्धान का अंतर है। भरत जी के पास कर्मोदय अनुसार संयोग सामग्री है, लेकिन उनकी जो दृष्टि है, उनका जो श्रद्धान है, क्या श्रद्धान है बोलो, कि मैं आत्मा हूं, पर पदार्थ मेरा किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, बराबर। ये उनकी श्रद्धा है। और जो गरीब भले ही हो लेकिन उसकी मान्यता यदि उसके पास सहयोग सामग्री भले ही कम हो, लेकिन यदि मान्यता यह है कि मुझे पर में पर सहयोग से सुख की प्राप्ति होगी, बराबर, ऐसी यदि मान्यता है तो वह जीव बहुत विषयाभिलाषी है। देखो, निवृत्ति रहित होने से, निवृत्ति रहित है ना, पर पदार्थों से निवृत्त हुआ ही नहीं, बराबर, पर पदार्थ में अपनापन किया इसके कारण पर पदार्थों से निवृत्त हुआ नहीं, तू सर्व जगत की माया अंगीकार करने की अभिलाषा रखता है। पूरे जगत में जितने भी संयोग सामग्री है सब मुझे मिल जाए, मैं ऐसा खाऊं वैसा खाऊं, है ना, इत्यादि पांचों इंद्रियों में आप लगा लेना। इसलिए भावों से तो तूने कुछ भी नहीं छोड़ा, क्या परिणाम तो क्या किया, सब कुछ विषय भोग करने के ऐसे परिणाम किया, जिस प्रकार राहु सूर्य और चंद्रमा को निगलना चाहता है। अब जो राहु है वह क्या चाहता है कि मैं सूर्य और चंद्रमा को निगल जाऊं, चाहता तो है, अभिलाषा तो है, उसी प्रकार परंतु निगल नहीं पाया इसलिए वे बच गए। लो क्या, राहु ने सूर्य और चंद्रमा को निगल नहीं पाया इसलिए वे बच गए। उसी प्रकार तेरे मुख से जो कुछ भी बचा है वह तेरी भोजन करने में आसक्ति, आसक्ति मतलब ग्रहण करने की क्षमता में कमी के कारण से कारण बचा है, बराबर, मतलब भोगना तो सब कुछ चाहता है लेकिन भोग करने योग्य सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है। वही वो तंदुल मच्छ वाला उदाहरण कि तंदुल मच्छ चाहता तो क्या है भाई जी, चाहता तो यही है कि मैं किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन इतनी उसके पास सामर्थ्य नहीं है, बराबर। इसी प्रकार हम सब जिन्होंने जिनको वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं है, जो वस्तु के स्वभाव को नहीं जानते, अपने आत्मा में ही सुख है उसमें लीन होने से हम भी सुखी हो सकते हैं ये सब तो जानते नहीं, और पर में सुख है पर से मुझे सुख होगा ऐसी मान्यता रखने वाले जीव सब क्या करते हैं कि सामर्थ्य नहीं हो लेकिन फिर भी पर पदार्थ में तृष्णा भाव रखते हैं, पर पदार्थ को चाहना चाहते हैं और सुख मानते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं, पर पदार्थ मिलता नहीं, संयोग आदि मिलते नहीं, उसका दुख, उससे परिणाम कसाय में हुए, उससे कर्मों का बंधन, और फिर सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसे भोग नहीं पा रहा, उसका दुख, उससे भी निरंतर कसाय भाव कर्मों का बंधन चलता रहता है। ऐसा यह जीव भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म का बंधन करता है, फिर द्रव्य कर्म का उदय आता है, फिर जब द्रव्य कर्म का उदय आया, मोहिनी है, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, कसाय भाव इत्यादि का उदय आया, तो फिर अज्ञानी जीव उनसे जुड़ता है, किससे, कर्मों के उदय से जुड़ता है, तो फिर से भाव कर्म करता है और फिर से द्रव्य कर्म बंधते जाते हैं। ऐसा ज्ञानी जीव उनसे जुड़ता नहीं है, क्यों, क्योंकि ज्ञानी जीव कर्म को भी जानता है और कर्म फल को भी जानता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है, और अज्ञानी जीव कर्म में और कर्म फल में अपनापन करता है। इसलिए भाव द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म होते हैं और फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंधन होता है, और ऐसा कब से चल रहा है, अनादिकाल से, कब तक चलेगा बोलो ना
कब तक चलेगा? जब तक ऐसी मिथ्या मान्यता रहेगी तब तक। कैसी मिथ्या मान्यता? कि कर्म और कर्म फल में अपनापन रहेगा तब तक ऐसा चलेगा। जिस समय हो, बोलो आगे, आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हो, कर्म कैसे भी कर्म का उदय हो, आत्मदृष्टि होना चाहिए। हाँ, शरीर आदि जो है, मुनिराज वन में क्यों जाते हैं? वन में जाकर तप ध्यान इत्यादि करते हैं, तो वहां तो बहुत से उपसर्ग इत्यादि होंगे ना, तो वो वहां पर जानते हैं कि जो उपसर्ग इत्यादि होंगे तो वो मेरे ऊपर नहीं होंगे। किस पर होंगे? शरीर पर होंगे, और मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा अडिग श्रद्धान है। इसलिए वन में जाकर तप ध्यान इत्यादि करते हैं, और शरीर आदि पर उपसर्ग भी आ जाए तो क्या मानते हैं? बोलो, कौन सा उत्सव मानते हैं? बोलो बोलो, मृत्यु महोत्सव भारी, मृत्यु को भी उत्सव मानते हैं। ठीक है, जाए तो जाए, क्योंकि ये शरीर आदि मेरा नहीं है, या मैं शरीर आदि नहीं हूं, मैं तो सदा सर्वदा रहने वाला एक गायक परमात्मा हूं, गायक तत्व हूं, जिसका स्वभाव शरीर को भी जानना है, सॉरी पहले तो जिसका स्वभाव अपने को जानना है, और पर पदार्थ भी जानने में आए तो आए। दर्पण तल इब सकला, दर्पण का उदाहरण देते ना, दर्पण का कार्य क्या है? अपनी निर्मलता। दर्पण का कार्य ये नहीं कि भाई आप सामने आओ, सामने आओ, आपको जानना है, आपको देखना, ये कार्य नहीं है। दर्पण का कार्य है अपनी निर्मलता, अपनी स्वच्छता। लेकिन उसके बाद यदि पर भी उसमें झलके, कोई उसमें जाए और अपना चेहरा देखे तो भले ही देखे, लेकिन उसका कार्य तो अपनी निर्मलता है। इसी प्रकार जो महामुनिराज होते हैं वो अपना पन अपनी आत्मा में करते हैं, वन जंगल में जाकर भी अपनी आत्मा को ध्याते हैं, और शरीर आदि में अपनापन है नहीं, इसलिए उन्हें विषय भोग तृष्णा इत्यादि नहीं है। देखो भावार्थ, यह जीव इतना विषयासक्त और तृष्णातुर है कि इसे सर्व जगत का वैभव और तीन लोक के विषय प्राप्त हो जाए तो भी इसकी तृष्णा ना मिटे। क्यों ना मिटे? सब तो मिल गया भाई साहब, सब मिल गया, अब तो तृष्णा मिटनी चाहिए ना, लेकिन मिटती नहीं। क्यों नहीं मिटती? कोई कारण होगा, पर पदार्थ का संयोग चाहिए था, संयोग मिल गया, तो अब तो तृष्णा मिटनी चाहिए ना। क्यों नहीं मिटती? क्योंकि उसमें, पर पदार्थ में तृष्णा मिटाने का ऐसा कोई भी कारण नहीं है। पर पदार्थ का तो स्वभाव क्या है? हाँ बोलो, पर पदार्थ मतलब धर्म अधर्म द्रव इत्यादि तो है ही, लेकिन हम जो पर पदार्थ हमारे सामने जो दिखता है उस पर पदार्थ की बात कर रहे हैं, कि पुद्गल आदि, कि जो पुद्गल आदि है उसका स्वभाव क्या है? हाँ, बनना और बिछुड़ना और स्पर्श रस गंध वर्ण, ये उसका स्वभाव है। तो वो तो अपने स्वभाव रूप कार्य करेगा, तृष्णा मिटाने का कार्य वो कैसे करेगा? बराबर, तृष्णा तो कैसे मिटेगी कि जब हम उनमें सुख बुद्धि करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनमें सुख है नहीं, जब हम अपनी उल्टी मान्यता को मतलब मिथ्यात्व को छोड़कर सच्ची मान्यता करेंगे, सच्चा श्रद्धान करेंगे, तो पर पदार्थ में सुख बुद्धि छूट जाएगी। और जब पर पदार्थ में सुख बुद्धि छूट जाएगी तो पर पदार्थ में विषयों में तृष्णा करना, सुख मानना, ये सब भी छूट जाएगा। वास्तविक में हमें क्या करना चाहिए कि हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है और मैं क्या कर रहा। बराबर भजन है ना एक, हम सब क्या करते हैं, पुद्गल में ही अपनापन करते हैं, पुद्गल को टिकाए रखना चाहते हैं। बराबर, जबकि क्या, जहां देह अपनो नहीं ताहन अपनो कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोए। वो एक भजन बता रहा था ना मैं, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। हाँ, एक पद और बताऊंगा इसका, पहले हम विचार करते हैं कि हम तृष्णा किसमें कर रहे हैं, हम सुख किसमें मान रहे हैं, पुद्गल में, शरीर आदि में, शरीर आदि से संबंध रखने वाले पर पदार्थों में। तो इसी भजन में एक पद आता है, एक दिन ऐसा होगा लोगो, जंगल होगा बासा, इस तन पर हल फिर जाएंगे और पशु चरेंगे घासा। सोचो हम किस पे किसकी तृष्णा कर रहे हैं, किन संयोगों को पाने की इच्छा कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। बच्चों की कक्षा लेते ना तो उसमें बताते हैं कि भाई हम जितने भी पाप करते हैं, क्या हम जितने भी पाप करते हैं वो सब पाप शरीर के लिए करते हैं। कोई ऐसा पाप है जो आत्मा के लिए करते हैं, भैया ये तो करना ही पड़ेगा। जयेश भाई जी, कोई ऐसा पाप है जिसको हमें आत्मा के लिए करना पड़ रहा हो? सारे के सारे पाप सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए और शरीर से संबंध रखने वालों के लिए। लेकिन क्या कहा भजन में, इस तन पर हल फिर जाएंगे। कैसे हल फिर जाएंगे? अरे शरीर है, जब इसमें से देह देवल में विराजमान जो भगवान आत्मा है वह निकल गया तो ये शरीर कोई जला देगा, कोई गड़ा देगा, कोई कुछ करेगा, होगा तो यही। लेकिन ये बहुत अच्छा सुअवसर हमें मिला है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मतलब देव तो है नहीं और गुरु भी मिलना बहुत मुश्किल है, शास्त्र तो है लेकिन हम उनका यदि स्वरूप जाने, अंकल जी देव शास्त्र गुरु का हम स्वरूप जाने तो हमें उनका भी समागम है। बराबर, ऐसा तो ये सब जानकर अपना कार्य कर लेने योग्य है। बराबर, और अपना कार्य क्या है, 1 करोड़ है तो 10 करोड़ करना है, 10 करोड़ है तो 1 अरब करना है। ये अरे ये सब तो पुण्य प्रमाण होंगे ही होंगे, लेकिन अपना कार्य है कि जो आज तक अनादि काल से आज तक किया नहीं ऐसा अपने में अपनापन करना। बोलो, एक हमारे मतलब हिंदी भाषी हिंदी में आता है कि तू भीतर जा और तू भी तर जा। दोनों बात समझ में आई? तू भीतर, भीतर मतलब अंदर, तू अंदर जा और तू भी तर जा। तर जा मतलब इस संसार सागर से पार हो जा। जितने भी आज तक तरे हैं, तरे मतलब संसार से पार हुए हैं, संसार से मोक्ष की प्राप्ति जिन जिन ने की है, उन सब ने अपने भीतर जो विराजमान भगवान आत्मा है उसमें अपनापन किया है
जी।
तो यह जीव इतना विषयासक्त और तृष्णातुर है कि इसे सर्व जगत का वैभव और तीन लोक के विषय प्राप्त हो जाएं तो भी इसकी तृष्णा ना मिटे। भावार्थ में भी वही उदाहरण है कि जैसे राहु सूर्य चंद्रमा का भक्षण नहीं कर सका इसलिए वे बचे रह गए, वैसे जो भी सामग्री बची रह गई है वह इसकी भोगने की सामर्थ्य से बची है, असामर्थ्य, भोगने की असामर्थ्य से बची है। इस जीव के पास शक्ति नहीं है कि वह इन सब को भोग पाए, लेकिन परिणाम भाव तो यही है कि मैं सर्व का भक्षण कर लूं, क्योंकि इसे यह लगता है कि मैं विषयों का भक्षण करके सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आज तक कोई भी जीव ऐसा नहीं हुआ कि जो विषय का भक्षण करके सुखी हो जाए। छोटे भाई साहब या सुमत प्रकाश जी, आप सबने नाम सुना ही होगा, वो एक उदाहरण देते हैं कि एक ट्रक रेत पहले मतलब वो घानी में पहलते ना, तो एक ट्रक रेत पहले तो कितना तेल निकलेगा? अरे एक बोरा यदि एक क्विंटल यदि सोयाबीन वो करते हैं पहलते हैं तो उसमें तेल निकलता है। तो यहां तो एक ट्रक रेत की बात चल रही है, एक ट्रक रेत पहले और कितना तेल निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसमें है ही नहीं। बस ऐसा ही है कि पर पदार्थ में सुख है ही नहीं, बराबर। देखो कुछ करना नहीं है लेकिन अपने अकर्ता स्वभाव में, अकर्ता मतलब पर का अकर्ता, ऐसा नहीं कि मैं अपना कुछ नहीं करता, अपना करता है, ज्ञान दर्शन सुख वीर इत्यादि सब उसके गुण हैं, गुणों का परिणमन होता है, बराबर। लेकिन पर का अकर्ता हूं, पर के स्वभाव का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं, ऐसे श्रद्धान करना है। क्या करना है? कि मैं अपने स्वभाव रूप तो परिणमन करता हूं लेकिन मैं पर का अकर्ता हूं। जैन दर्शन मतलब क्या, जिनेंद्र भगवान की वाणी मतलब क्या, जिनवाणी मतलब क्या, कि जहां जिन बनने की, जिनेंद्र बनने की बात हो, बराबर। और अभी मैंने बताया था ना पंच कल्याणक मतलब क्या, कि जिसमें आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया हो, जिनेंद्र बनने की, जिन समान होने की प्रक्रिया हो, ऐसी जिनवाणी का हमें स्वाध्याय बार बार करना चाहिए। क्योंकि आप सबने एक हिंदी का दोहा पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। एक मुलायम सी रस्सी पत्थर पर निशान पाड़ सकती है? बोलो सुमित भाई, रस्सी है, रस्सी पत्थर पर निशान पाड़ देगी? लेकिन बार बार अभ्यास करने से, अभ्यास करने से मतलब आप सबने लगभग देखा होगा कि कुएं जहां से मतलब लोग बाग पानी निकालते हैं, ऐसा कुआं कि वहां पर रस्सी बाल्टी बाल्टी में रस्सी बांधकर और कुएं में डालते हैं और फिर उसे बार बार खींचते हैं। तो ऐसा बार बार करने से कुएं के पत्थर पर, जो ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है उस पर भी निशान पड़ जाता है। जब मुलायम सी रस्सी पत्थर पर निशान पाड़ सकती है, तो हम भी जो अनादि काल से भटक रहे हैं पर में अपनापन करके, तो जब स्वामे अपनापन करेंगे और बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो हम भी इस भव समुद्र से पार हो सकते हैं, बराबर। लेकिन उसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी कहते हैं, लेकिन मैंने उसी को थोड़ा सा और सुधार कर पंडित उत्तम चंद जी स्योनी, जो अब नहीं है, वो कहते हैं कि भाई मुझे आत्महित करना है। क्या करना है? हम सबको आत्महित करना। आत्महित करना मतलब अपने में अपनापन करना है और स्वाध्याय से आत्महित होता है। स्वाध्याय से मतलब मात्र पढ़ लेने मात्र से नहीं, अभ्यास करने से। जो पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसका बार बार चिंतन मनन करने से, स्वाध्याय करने से आत्महित होता है। और जो तीसरी बात है वो बहुत अच्छे से समझने योग्य है कि मुझे शास्त्र स्वाध्याय आत्महित के लिए ही करना है, बराबर। अंकल जी अपन सब बैठते हैं ना, नीचे बैठ के स्वाध्याय करते हैं, लेकिन हमारा अभिप्राय क्या होना चाहिए? हमारा अभिप्राय ये होना चाहिए कि हम जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं वो किस लिए? कि मुझे आत्महित हो। आत्महित हो मतलब मैं खुद आत्मा हूं लेकिन मुझे अपनी पहचान हो। मैं खुद आत्मा हूं लेकिन कभी मैंने उसमें अपनापन नहीं किया, हमेशा पर पदार्थों में ही अपनापन किया, शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थों में अपनापन किया। अभी क्या करना है? शरीर भी रहेगा, आत्मा भी रहेगा, लेकिन दोनों का भेद विज्ञान करना है, दोनों को भिन्न भिन्न जानना है, बराबर। और ऐसा संभव है क्या? नहीं। शरीर भी है और आत्मा भी है, दोनों को भिन्न भिन्न जानना संभव है क्या? नहीं। बोलो, संभव है? ऐसा किसी ने किया? किया भी है नहीं, संभव भी है और किया भी है, ऐसा किसी ने किया? किनने किया? हाँ बोलिए। अरे आज तक जितने भी भगवंत हुए, पांचों परमेष्टी हुए, पांचों परमेष्टी में दो कौन है? दो देव और तीन गुरु, अरहंत सिद्ध देव, आचार उपाध्याय साधु गुरु, उन सब ने भी तो यही किया है। क्या किया? कि उन सब का भी, गुरु का, अरहंत परमेष्टी का शरीर है ना, तो शरीर होते हुए भी अपने आप को शरीर से भिन्न जाना, शरीर से भिन्न माना और अपने आप को शरीर से भिन्न जानकर मानकर जो अपना है उस आत्मा में अपनापन किया, तो वो परम पद में स्थित हो गए। परम पद में स्थित हो गए मतलब परमेष्टि बन गए। परमेष्टि मतलब क्या? जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं, बराबर। जो मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हैं, ऐसे आचार उपाध्याय साधु, उन सब ने भी यही किया है। और हमें भी क्या करना है? जिस पंत चले भगवंत वही आचरिए। क्या? एक बार मन में विचार तो करो कि करना क्या है। क्या ये चार गति 84 लाख योनियों में ऐसे ही घूमते जाना है या इस घूमने से बचना है? बचना है, बराबर ना? तो बचना है तो उस बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय क्या है कि अपनी मान्यता सुधारना। कहीं जाना नहीं है हा? अरे हमारी तो उम्र ज्यादा हो गई पंडित जी और ये और वो। अरे ज्यादा कम से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? हमें तो अपने आत्मा के स्वभाव में, अपने आत्मा है, अपनी आत्मा का हो या अपने स्वभाव में अपनापन करना है, उसे जानना है कि मेरा स्वभाव क्या है। शरीर आदि मेरा स्वभाव नहीं है या शरीर आदि मैं नहीं हूं। क्यों क्यों नहीं है भाई शरीर आदि में? बोलो, शरीर से भिन्न है, बराबर। यदि विचार करो ना, यदि शरीर आदि मैं होता तो कौन से शरीर को मैं अपना कहता? अनादि काल से ये जीव अन्य अन्य शरीरों में गया है, बराबर है अंकल जी? हाँ? अब यदि शरीर को अपना कहना पड़े तो फिर भाई कौन से शरीर को अपना कहूं? हाँ? और यदि शरीर अपना होता तो सबसे पहली बात तो छूटता ही नहीं। हाँ? जो विनाशिक है वो स्वभाव नहीं होता। स्वभाव तो वो होता है जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसका हमेशा सद्भाव रहता है, और जिसका अभाव हो जाता है वो स्वभाव नहीं है, वो मैं नहीं हूं, ऐसा समझना है, विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। अब शरीर तो मैं नहीं हूं ये बराबर, लेकिन मैं कौन हूं इसका भी तो विचार करना पड़ेगा ना। शरीर नहीं हूं तो अब कौन हूं? तो फिर क्या बचा? दो चीजें हैं, एक जो दिखती है और दूसरा दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? दिखना चाहिए था ना। बोलो क्या? हाँ, यदि दिखता तो आचार्य उमा स्वामी देव कहते हैं रूपिणः पुद्गलः। यदि दिखता तो आचार्य देव ने उसकी परिभाषा पहले ही बना दी, यदि दिखे तो पुद्गल। बोलो, यदि दिखता तो पता है जीव द्रव्य नहीं होता, पुद्गल हो जाता। तो दो चीजें हैं जो दिखती है, दो चीजें हैं जो हमारे साथ है, एक तो शरीर और शरीर के अंदर जो देख रहा है, जान रहा है, अनुभव कर रहा है वो। तो अभी सिर्फ इतना करना है कि इन दो चीजों में से किसी एक में अपनापन करना है। अब किसमें अपनापन करना है, किसमें अपनापन नहीं करना है, इसका विचार हमें करना है। यदि शरीर में अपनापन करेंगे तो कौन कौन से शरीर में करेंगे, कितने शरीर में करेंगे? ये शरीर तो नाशवान है, ये शरीर भी नाश होने वाला है, तो इसमें अपनापन करेंगे तो फिर तो अपना ही नाश हो जाएगा। तो फिर अपनापन करने लायक कौन है? अपना भगवान आत्मा। काष्ट मध्य यथा बन्नी शक्ति रूपेण तिष्ठति, देह मध्य ततः शिवा यो जानाति स पंडितः। काष्ट मतलब लकड़ी के, लकड़ी में जैसे अग्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति रूप से है कि जैसे ही उसे अग्नि का सहयोग मिलेगी तो वह जलने लगेगा, उसी प्रकार अपने शरीर में, देह मध्य तथा शिवा, उसी प्रकार अपने शरीर में अपने आत्मा जो विराजमान है और जो उसे जानता है वह पंडित है। क्या? अपनी आत्मा में अपनापन करना है। सब स्थिति परिस्थिति बनती और बिगड़ती रहेगी क्योंकि अनादि काल से ये चल रहा है, ये कोई आज ही हो रहा है ऐसा नहीं, अनादिकाल से स्थिति बन रही है, बिगड़ रही है। कभी राजा, कभी रंग, कभी फकीर, कभी शत्रु, सब कुछ हुआ है। लेकिन इन सब स्थिति परिस्थिति को तोड़कर जो जानने देखने वाला मैं हूं, आत्मा, आत्मा कहते तो ऐसा लगता किसी और की बात चल रही है, जो जानने देखने वाला मैं हूं, उसमें अपनापन करना है। उसमें क्या होगा कि जो अभी अपन ने पढ़ा है ना, तृष्णा, विषय भोग, ये अपने आप छूट जाते हैं। अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं, गेयो की जो लुब्धता है, लुब्धता है वो कहां चली जाती है हमें पता ही नहीं चलता। क्या कि पर पदार्थों को जानकर उसे भोगने का की जो इच्छा है वो कहां चली जाती है पता ही नहीं चलता। क्यों? कि जब अपनी आत्मा में अपनापन होता है, जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु ना सुहावे, रे जब निज आत्म अनुभव आवे, अपनी आत्मा का अनुभव करना। क्या पर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, विषय भोग इत्यादि जो हमारी उल्टी मान्यता से हमने मान रखे हैं, यदि हम अपनी उल्टी मान्यता को सुधारें तो पर पदार्थ तो अपनी जगह रहेंगे लेकिन हमारी जो उल्टी मान्यता थी वह बदलकर सच्ची मान्यता होगी, सच्चा श्रद्धान होगा, और उस सच्चा श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन होगा। और जब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान भी होता है और स्वरूपाचरण चारित्र भी होता है, स्वरूप में आचरण रूप चारित्र भी होता है। तो ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की हम सभी प्राप्ति करें, ऐसी मंगल भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। जी बराबर, अपना सहज, सहज होता है। हाँ बराबर, स्व के लिए तो सहज होता है, स्व के लिए करने की भी जरूरत नहीं। ये तो उपदेशात्मक शैली है ना, कहा जाएगा, कहने में तो यही आएगा कि अपना अनुभव करना, लेकिन जब अनुभव होता है तो उसमें कहने की करने की भी जरूरत नहीं होती, सहज होता है। सहज जी, जय जय
निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है उसके लिए जिन वाणी मात को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी मात नो, जय हो।